कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशमुख, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत परम वैष्णव भगवान शंकर रुद्र गीत प्रचेता प्राचीन बरहित के पुत्रों को सुना रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भक्ति उपासना करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो आइए 34वें श्लोक से आगे आज सत्संग चलेगा। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। भगवान शंकर कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, सुनो आप जो मंत्र मैं उच्चारण करने जा रहा हूं। नमः पंकज नाभाय, जिसकी नाभि से कमल और जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसे भगवान पंकज नाभ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान क्या करते हैं? भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने, ये सृष्टि में पांच भूतों की सृष्टि, तन मात्राओं और इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। ये सबकी सृष्टि करने वाले हैं, उनका ये उद्गम स्थान है। कौन है उनका नाम? वसुदेवाय, वसुदेव, वासुदेवाय शांताय। वो वासुदेव है जो अंतःकरण में चित्त के देवता हैं, क्योंकि आने वाले चार श्लोकों में अंतःकरण के चार जो देवता है, इसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आएंगे, और 10.5 श्लोकों में भगवान जो विश्व रूप है, ये सारा विश्व है, उसका वर्णन 10.5 श्लोकों में है। यहां से तो वासुदेव कैसा है? बोला शांताय, कूटस्थाय, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता है। वो अपने आप स्वयं प्रकाशित है, स्वरोचसे। सुश्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जो सारी सृष्टि के उद्गम है, कारण है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, और वो भगवान इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के नियंता है, वो सर्वव्यापी है, वासुदेव हैं, और भगवान शांत हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। जो 6 परिवर्तन जीव के लिए शरीर में आते हैं, वो भगवान के शरीर में नहीं आते। चक्रवर्ती पाद भाव लिखते हैं, तन मात्रा और इंद्रियों के स्वामी, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, उस वासुदेव जो चित्त के अधिदेव हैं और जिनकी सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमारी चेतना को स्थिर करने में करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि चित्त के अधिदेव हैं, तो चित्त हमारी चेतना को भगवान के ऊपर स्थिर करें। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भक्ति के लिए सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियों के देवता, इंद्रियां भगवान ने प्रकट की है, तो भगवान उनके स्वामी है। तो इसके लिए भगवान की कृपा से वो हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएं, प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना में कहते हैं, आप तन मात्राओं के, भूत सूक्ष्म के, इंद्रियों के देवता हैं और के नियंता है, हे कमलनाभ भगवान, मेरा शरीर, शंकर जी कहते हैं, उस ब्रह्मा से प्रकट हुआ है जो कमल के ऊपर आपकी नाभि से प्रकट हुआ। अब मैं इस शरीर से आपकी भक्ति कर सकूं और उसके लिए सहयोगी हो, ये मेरे लिए कृपा कीजिए। वासुदेव जो चित्त के अधिदेव है, उसको मैं प्रार्थना करता हूं, जो प्रथम चतुर्व्यूह है और सारे शरीर, इंद्रियों, इसके समूह की जो चेतना है, उसके स्वामी है, वो वासुदेव मेरे चित्त को शांत करे, कूटस्थ करे, इधर उधर ना भटके, भगवान के चरणों में लगे और मेरी भक्ति दृढ़ हो, और आप अपने सुंदर स्वरूप को स्वरेच रोच सा अपने आप प्रकट करके दर्शन कराओ भगवान। ऐसा चक्रवर्ती पाद का भाव है श्लोक के विषय में। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भ सागर में शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल और उसके कप ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भगवान विष्णु उसको मैं नमस्कार करता हूँ, जो सारे इंद्रियों और तन मंत्रों के नियंता हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मैं भी तो उसी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हूँ, तो इसी सृष्टि में प्रकट हुआ हूँ, तो मेरे भी आप ही नियंता हैं सबके, और आपका नाम ऋषिकेश है, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और इसलिए ये सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। प्रभुपाद कहते हैं, बद्ध स्थिति में जीव जो है अपनी इंद्रियां अपने भोग के लिए उपयोग करता है, परंतु यहां भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि इंद्रियां उत्पन्न ही भगवान ने की है, उनका संचालन भी भगवान करते हैं, तो उनको लगानी भी भगवान की ही सेवा में चाहिए। तो ये भाव शंकर जी का यहां है, और इनके अंदर कोई दोष ना आवे, भौतिक प्रभाव न पड़े, इसलिए भगवान वासुदेव हमारे ऊपर दया करो, हमारा सहयोग करो, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और हमारे इंद्रियों को आप भक्ति में लगाने में सहयोग कीजिए, और इधर उधर न भटके, आपकी सेवा में लगे, ये कृपा कीजिए। तीन शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं महत्वपूर्ण है, शांताय कूटस्थाय स्वरोच से। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक जगत में तो सारी भौतिक चीजों में परिवर्तन आता ही रहता है, छह प्रकार का। क्या होता है, वो विचलित होती रहती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, और दुखी होते हैं, भ्रमित होते हैं, और फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, ऐसे कई छह प्रकार के, ये भूख प्यास के, और कई और प्रकार का उदाहरण देते हैं, जन्म लेना, बड़े होना, अपने जैसे अपने से पैदा करना, कुछ समय रहना, फिर बूढ़ा होना और फिर मरना, वो भी छह परिवर्तन शरीर में हैं, और ये भी छह शरीर में परिवर्तन होता है, भूख प्यास चिंता भ्रम ये सब शरीर में होते हैं मृत्यु तक। परंतु भगवान, आप भले भौतिक जगत में भी आए, फिर भी आप में ये परिवर्तन नहीं होते हैं, आप तो परमात्मा के रूप से हो, हे वासुदेव, इन आप के ऊपर इन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आपको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ, हमने आपको कहीं भगवद गीता में बताया होगा, कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है जिसके ऊपर कूटा जाए, कूटने वाली चीज के तो रंग रूप बदल जाए, परंतु जिसके ऊपर कूटा जाए वो वैसे का वैसे रहे। जैसे सुनार के पास जो लोहे का एरन होता है, उसके ऊपर कितने आभूषण बनते हैं, परंतु वो वैसे का वैसे रहता है, इसको कहते हैं कूटस्थ। तो भगवान से कितनी सृष्टियां हुई, कितनी 84 लाख जूनियां उनके ही निर्देश में हुई, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भगवान को कूटस्थ कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शांत है, और उनकी शक्ति को यहाँ स्वरोचसा कहा गया है, क्योंकि अपने स्वयं प्रकाशित है, उनकी दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में जो जीव है वो भी चेतन है, उसका प्रकाश वो भी भगवान का है, परंतु उसका दिव्य स्थिति से नीचे पतन होना संभव है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, वो भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में, भौतिक भवसागर में गिर पड़ता है, परंतु भगवान के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है भौतिक जगत का, इसलिए भगवान को कहते हैं स्वयं प्रकाशित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भौतिक जगत में हम सब जीव भगवान की सुरक्षा वासुदेव के शरणागत हो जाएं, उनकी भक्ति में लगें, तो निश्चित रूप से पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में चित्त के अधिदेव वसुदेव को, चित्त इंद्रियां ये सब भगवान की भक्ति में लगाने के लिए प्रार्थना है। आगे वाले श्लोक में अहंकार के और बुद्धि के देवता अथवा अधिदेव चतुर्व्यूह में संकृष्ण और प्रद्युम्न को प्रार्थना है। 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं। संकृष्णाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने संकृष्णाय सूक्ष्माय। संकृष्ण आप बहुत सूक्ष्म ये जगत की सृष्टि भी करते हैं, दुरंताय अंतकाय च, और आप दुरंत हैं, आपका कोई आपसे आगे नहीं जा सकता है, और इस जगत का अंत भी आप ही करते हैं। नमो विश्व प्रबोधाय, विश्व को प्रबोध देने वाले, बुद्धि में प्रेरणा देने वाले प्रद्युम्नाय अंतरात्मने, जो हमारे अंतःकरण में आप विराजमान है, आपको नमस्कार है। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान आप सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के सारे तत्वों का सृष्टि करने वाले, उनका आद हो, वो आपसे निकलते हैं, आप उन सब को उन सब के स्वामी हो, उनको कठा भी करते हो और उनको फिर बिखेर के प्रलय भी कर देते हो, बिखेरना और कठा करना। और उसके जो अधिदेव है आप संकृष्ण हैं, और जो बुद्धि के देव जिसको प्रद्युम्न कहते हैं उसको प्रणाम करते हैं, और चक्रवर्ती पाद भाव लिखते हैं जो सूक्ष्म है उसको मैं प्रणाम करता हूं, सूक्ष्म को, अनंत को, जो संकृष्ण है, जो अहंकार के अधिदेव हैं, जो विश्व की प्रलय करते हैं, और मैं प्रद्युम्नों को प्रणाम करता हूं जो बुद्धि के अधिदेव है, जो इस विश्व को प्रबोध करते हैं, और वो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे अंतःकरण में रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं सूक्ष्म को जो दिखने में नहीं आता, और दुरंताय को जो अनंत है, वो इस विश्व को प्रलय के समय अपने मुख से आग निकालते हैं और इसकी प्रलय करते थे, अपने मुख से, संकर्षण के मुख से आग निकलती है, फिर ये पानी सब खोलने लगता है, सूर्य नीचे आता है, ऐसे प्रलय होती है। तो क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं ओ संकर्षण, जो मेरे अंदर झूठे अहंकार के कारण आसक्ति है, शरीर में, घर में मेरा मेरापन है, उस सारे को, ये जो ममत्व है झूठे अहंकार के कारण मेरा मेरा, इस सारे को आप समाप्त कर दीजिए। तो संकृष्ण हमारे अहंकार को शांत करे, संसार में मैं मेरा करने से बचाए और भगवान की सेवा में लगाए। और जब ऐसे अहंकार हमारा ममत्व से अहमत्व और ममत्व मैं और मेरा से ऊपर उठ जाएगा और विषयों में आसक्त नहीं होगा, तो फिर भगवान हमारा सच्चा अहंकार आपकी सेवा में लगे, उसके लिए हमारी बुद्धि को जगाइए, प्रबुद्ध कीजिए। हे प्रद्युम्न, अहंकार शांत हो, झूठा समाप्त हो, सच्चा अहंकार भगवान की सेवा में लगने का हो जाए, तो फिर बुद्धि हमारी प्रद्युम्न आप भगवान के स्मरण में लगाइए, भक्ति में लगाइए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये विश्व का सृष्टि भगवान के ही निर्देश से होती है सब। प्रभुपाद जी कहते हैं, वैज्ञानिक संसार में कहते हैं कि ये पृथ्वी का आकर्षण है, सब चीजों को अपनी जगह पे रख के बैठा है और ये सब चीजें अपनी जगह पे संगठित हैं पृथ्वी के आकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। परंतु इस भौतिक जगत में इन सब का स्वामी वो तो भगवान है, और केवल ये सृष्टि को संगठित नहीं रखता है, समय आने के ऊपर इस सारी को बिखेर के प्रलय करके सब कुछ समाप्त भी कर देता, और उस समाप्ति के समय प्रलय की अग्नि भगवान शंकरशन के मुख से प्रकट होती है। और इसका वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, विश्व रूप में भगवान के मुख से ऐसे अग्नि निकल रही है, उसका वर्णन है। कि भगवान शंकरशन के रूप में आप सृष्टि को संगठित भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं। प्रद्युम्न जो चतुर्व्यूह में तीसरे नंबर पे है, वसुदेव संकृष्ण और प्रद्युम्न जो तीसरे नंबर पे है, वो इस विश्व के वृद्धि के लिए और संरक्षण के लिए बुद्धि का काम है, वो कार्य करता है। और सूक्ष्म शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, ये जो भौतिक शरीर हमारा है स्थूल है, परंतु इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का प्रभुपाद तीन लिखते हैं, और इनके अधिदेव चार हैं। वसुदेव चित्त का अधिदेव है, अनिरुद्ध मन का अधिदेव है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रद्युम्न बुद्धि का अधिदेव है, और संकृष्ण अहंकार का अधिदेव है। तो इसको कहते हैं चतुष्ट अंतःकरण, ये हमारा अंदर की इंद्रियां चार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके चार तो ये चतुर्व्यूह अधिदेव हैं, इनको प्रार्थना की जा रही है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का इस संसार में पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। भगवद गीता में भी लिखा है कि हमारा स्थूल शरीर जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि का बना हुआ है, और हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, और ये सारों का स्वामी और नयनता भगवान है। कौन? वासुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। आगे वाले श्लोकों में और इसका विस्तार किया जा रहा है, तो 36वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रियात्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्त आत्मने। नमः नमो, बार बार नमस्कार करते हैं अनिरुद्ध को, जो मन के इंद्रियों में जो सबका स्वामी है मन, ऋषि के न इंद्रिय आत्मने, ऋषि केना का मतलब इंद्रियां, और उनके जो आत्मा ने उनके अंदर जो मुख्य है मन, उसका है देवता, उसका अधिदेव है, प्रिजाइडिंग डीटी है। और नमस्कार करते हैं परमहंसाय को। ये परमहंस के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो परमहंसाय परम सिद्ध है, और इस परमहंस का एक अर्थ निकाला है चक्र प्रतिपाद ने, सूर्य को नमस्कार करते हैं, जो प्रद्युम्न जो अनिरुद्ध का विस्तार है, आएगा देखते हैं क्या है, और वो कैसा है, वो पूर्ण है, अपने प्रकाश से अनादिकाल से पूर्ण है। निवृत्त आत्मा ने वो भौतिक प्रकृति से परे है, प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ में लिखा है। हे भगवान, अनिरुद्ध आपको प्रणाम करता हूं, जो आदि देव है इंद्रियों के स्वामी मन के, इंद्रियों के स्वामी मन के आदि देव भगवान अनिरुद्ध आपको प्रणाम करता हूं, और पुनः बार बार आपको प्रणाम करता हूं। आपको अनंत भी कहते हैं, संकर्षण भी कहते हैं, आप पूरी सृष्टि को अपने मुख की अग्नि से प्रलय करते हो, ये प्रभुपाद ने शब्द लिखे हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूं, जो मन के अधिदेव है, जो इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी अनिरुद्ध। अब मैं पूर्ण सूर्य को नमस्कार करता हूं, परमहंस का अर्थ लिखा है सूर्य, वो जीवों का पोषण करता है, सूर्य जीवों का पोषण करता है, तो परमहंसाय का अर्थ है जीवों का पोषण करने वाला। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आत्मने का मतलब जो नियंत्रण में रखने वाला है मन को, मन को नियंत्रण में रखने वाले, मन कौन सा, जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, उसको कहते हैं ऋषिकेश, मां इंद्रियों का स्वामी, और उसका स्वामी है अनिरुद्ध। तो क्या कहना चाहते हो अनिरुद्ध को, चक्रवर्ती बात कहते हैं, हमारा मन केवल भक्ति की ओर ही आकर्षित हो, ये अनिरुद्ध कृपा करो, भक्ति को छोड़ के हमारा मन कहीं नहीं जाए, अंतःकरण के चारों विभागों को, चित्त अहंकार बुद्धि और मन, ये है अंतःकरण के चार विभाग, और इनके चारों आराध्य देव की उपासना करने से, उनको प्रणाम करने से, ये चार श्लोकों में वर्णन किया गया है। इससे हमारे पांच तत्वों का शरीर और उनसे बनी हुई इंद्रियां सब पवित्र होती। अब सूर्य देव परमहंस को प्रणाम करते हैं, नी का मतलब निरंतर और भृत का मतलब पोषण करते हैं, किसका, आत्मा ने जीवों का, सारे जीवों का निरंतर पोषण करने वाले सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। कहते श्रुति में शब्द लिखा है हंस, हंस सुचिष्ट 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 सुचिष्ट, हंस का अर्थ है सूर्य, और सुचिष्ट का अर्थ है जो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता है अथवा प्रकाश में जो निवास करता है, ओ सूर्य, ओ देवता, ओ सूर्य के अधिदेव। तो सूर्य किसका अधिदेव, बोला आंखों का, हमारी हर इंद्री का एक देवता है, तो आंख के अधिदेव का नाम है सूर्य। ये हमारे आंखों के अधिदेव सूर्य हमारे को भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने की शक्ति दीजिए। अब चार अंतःकरण को तो प्रार्थना करके शांत किया भक्ति में लगाने के लिए, अब इंद्रियों को, तो आंख के देवता सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। और सूर्य क्या करेगा, जो मेरे शरीर में शक्ति है वो सूर्य से आती है। कैसे आती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सूर्य करता है बरसात, बरसात से होता है अन्न, और अनाज से होती है हमारे शरीर की शक्ति, और अनाज ऐसे सूर्य करता है सबका पोषण। तो वो हमारे सारे शरीर को पवित्र करे, ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ऋषिकेश इंद्रिय आत्मने, इस शब्द का अर्थ है मन जो इंद्रियों का स्वामी है। ऋषिकेन इंद्रिय आत्मने, इंद्रियों का स्वामी मन, और अनिरुद्ध है उस मन का अधिदेव, मन का अधिदेव उसका नाम है अनिरुद्ध। ये बात तीन बार हो चुकी है, अब पक्का आपको ये चार अंतःकरण के विभाग और उनके चार अधिदेव ये आपको याद होना चाहिए। चित्त का वसुदेव, अहंकार का संकृषण, बुद्धि का प्रद्युम्न, मन का अनिरुद्ध। इसलिए ये मंत्र वासुदेवाय संकृष्णाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः, इनसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रार्थना है। मन बुद्धि भगवान में लगे, अंतःकरण में मेरा के बजाय भगवान मेरा ऐसे करे, और हमारी चेतना जो भौतिक है वो कृष्ण भावना भावित हो जाए। अब इंद्रियों के देवताओं, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्ति करने के लिए मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना पड़ा, भगवान के चरणों के ऊपर। कृष्ण के लिखा है मन कृष्ण पदारविंदय, ये प्रभुपाद जी के लिखते समय ये शब्द प्रार्थना का, किसके प्रार्थना का, अम्बरीश महाराज की प्रार्थना का आया मन कृष्ण पदारविंदय। मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में निवास करे, स्थिर रहे, इसके लिए भगवान शंकर मन के अधिदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं अनिरुद्ध को, और उसकी कृपा से मन सदा भगवान के चरणों में लगे। और यहां प्रभुपाद जी को मन शब्द के ऊपर भगवत गीता का ये श्लोक स्मृति में आया कि भगवान ने तो कहा है मन मनाभव मद भक्तो मद याजी मां, तो मन भगवान में लगने के लिए मन के देवता को प्रार्थना, मन के अधिदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। तो मन क्या करेगा कि भगवान के चरणों का ध्यान करेगा, तब हमारी भक्ति हो सकेगी। भगवत गीता के 5:15 में भी कहा हुआ है मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि ज्ञान स्मृति और भुलाने की शक्ति भगवान से आती है। अनिरुद्ध हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाए। अब यहां तक अनिरुद्ध को पूरा करे, अब सूर्य के ऊपर आते हैं परमहंस के ऊपर। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनिरुद्धा अपने विस्तार से सूर्य देव हैं। यहां प्रभुपाद की लेखनी से ऐसे दिख रहा है सूर्य अनिरुद्ध ही सूर्य देव हैं, क्योंकि वो अनिरुद्ध का विस्तार है। इसलिए भगवान शंकर सूर्य देव को प्रार्थना कर रहे हैं इन श्लोक में। इतना लिख के प्रभुपाद जी फिर कृष्ण के चतुर्व्यूह वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, ये क्या है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये हमारे अंतःकरण के अधिदेव हैं। ये जो हमारा मनोविज्ञान के लिए मन का कार्य है उसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे हम संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, सोचते हैं, इसके अधिदेव हैं। अब अनिरुद्ध के विस्तार, सूर्य देव को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि वो भौतिक सारे पदार्थों को, जिससे शरीर बना हुआ है, उसका पोषण करते हैं। सूर्य शरीर के भौतिक पदार्थों का पोषण करते हैं। कैसे करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि परमहंस की एक दूसरा अर्थ है सूर्य देव, जो हम पढ़ के आए श्रुति से, सूर्य स्वरुचिष्ट सुचिष्ट लिखा था, जो और यहां सूर्य देव को कहा गया है निभृत आत्मने, निभृत आत्मने, इसका हमने निरंतर पोषण जीवों का तीन अर्थ निकाले थे चक्रवर्ती वाले, नि का मतलब निरंतर और भृत का मतलब पोषण करना और आत्मने का मतलब सब जीवों का। इसका अर्थ है कि सारे लोकों के अंदर जीवों का पोषण वर्षा से होता है और सूर्य देव जल को बादल बनाकर समय के ऊपर बरसात करते हैं और उससे अन्न का उत्पादन होता है और धरती से अन्न के उत्पादन से हमारा शरीर बनता है और सारे जीवों का पोषण होता है। और यहां सूर्य देव को पूर्ण भी कहा है, परमहंसाय पूर्णाय, पूर्ण का अर्थ है कि उनका प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत काल से करोड़ों वर्षों से आ रहा है, जब से सृष्टि हुई है तब से आ रहा है। सबको भगवान सूर्य देव, सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे, कभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं परमहंस शब्द का एक अर्थ और भी है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को धो के साफ कर दिया, भौतिक कलमशों से साफ किया, वो परमहंस है। प्रायः हम परमहंस का अर्थ समझते हैं हंस जो खीर और नीर में भेद कर लेता है, जल को दूध को जल से अलग कर सकता है, ऐसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक चीजों को अलग करके केवल भगवान में लगे वो परमहंस, इसका भौतिकता को धो दे और आध्यात्मिकता में स्थित हो जाए वो परमहंस, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। और प्रभुपाद जी इस परमहंस शब्द को कहते हैं कि सूर्य देव जब पूर्ण रूप से प्रकाश देते हैं, पर्याप्त मात्रा में जब प्रकाश देते हैं, तो हमारा मन साफ हो जाता है, शफाफ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में सूर्य की कृपा से मानव परमहंस के स्तर पे आता है, उसका मन पवित्र होता है। इसलिए शंकर जी अनिरुद्ध को प्रार्थना कर रहे हैं, जो मन के अधिदेव हैं, जो मन को शुद्ध करे, पवित्र करे और भगवान की भक्ति में लगाए। जैसे अग्नि सारे कलमश को धो के साफ करती है, सारे कीटाणु को मार के स्वच्छ स्टरलाइज करती है, ऐसे मन को साफ करने के लिए, धोने के लिए और उसको आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए अनिरुद्ध को प्रार्थना की जा रही। अब हम 37वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः, नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। स्वर्ग का अर्थ तो सबको आता है स्वर्गलोक, अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति, और द्वार का मतलब जिसका दरवाजा। स्वर्ग और मुक्ति के दरवाजे नित्यम शुचि षडे नमः, नित्यम सदा के लिए शुचि पवित्र, षडे नमः, और षडे का अर्थ है शुचि षडे, जो पूर्ण रूप से पवित्र है उसको नमस्कार करते हैं। नमो हिरण्यवीर्याय, नमस्कार करते हैं हिरण्य, हिरण्य कहते हैं वैसे सोने को, वीर्याय वीरज, ये हिरण्य वीर्याय ये हिरण्य गर्भ कहते हैं इसको, हिरण्य गर्भ वैसे ब्रह्मा जी का भी नाम है हिरण्य गर्भ, सारे जीवों का समूह। और चतुहोत्रा है, चार प्रकार के वेदों के यज्ञ की विधि विधान उनके नाम, तंतवे जो उनका तंतु है। प्रभुपाद जी आगे उसी को चला रहे हैं, हे अनिरुद्ध भाई, हे भगवान अनिरुद्ध, हे मेरे भगवान अनिरुद्ध, आप स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार खोलने वाले हैं और आप निरंतर शुद्ध जीवों के हृदय में निवास करते हैं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, आप हिरण्य रेतस हैं, हरे कृष्णा।
कॉल ट्राई कर लो,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा बाबू जी।
हाँ, मेरा खुला हुआ वो चला गया, अभी निकालो, ठहरो भाई, कहाँ गया ये, कोई नेट बीच में चला गया था। हरे कृष्ण, ओके, कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, कहाँ स्वधर्म निष्ठा शतक, ये तो हो गया 34, 35, 34, 37
37
है ना, ओके, 37 पे 37 को पढ़ रहे थे। सो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप अग्नि के रूप में जो चतुर्होत्रा यज्ञ के जो चार नाम है उसमें सहयोग करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। चक्रतिपाद लिखते हैं, निरंतर मैं सूर्य के रूप में आपको प्रणाम करता हूं भगवान। वो सूर्य जिसके लिए अभी हमने सुना के अनिरुद्ध का विस्तार है, वो स्वर्ग और अपवर्ग का दरवाजा खोलता है, मैं अग्नि को प्रणाम करता हूं, जो चार प्रकार के होता होता कहते हैं, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं, जो अग्नि से यज्ञ करते हैं उनको प्रणाम करता हूं। तो अग्नि वाणी का देवता है। तो अब आंख से तो भगवान का दर्शन, अभी वाणी से भगवान का गुणगान, इसके लिए चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अग्नि को मैं प्रणाम कर रहा हूं हिरण्य वीर्याय। ये अग्नि है जो चार प्रकार के यज्ञ पुरोहितों के द्वारा पूर्ण कराती है। कैसे? तंतवे वो यज्ञ कराती है। हे अग्नि का देव, जैसे आप हमारी वाणी को जीभा से प्रेरित करते हो, भगवान की गुणनाम लीला गाने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि अग्नि हमारे वाणी का आदि देव है। तो अब ये याद रहे कि सूर्य है आंख का आदि देव और वाणी का आदि देव है अग्नि। उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी वाणी गोविंद के गुण गाए, मेरी शक्ति जो अग्नि से भिन्न है वो पवित्र हो जाए, मैं उसको प्रणाम करता हूं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वर्ग तो सब जानते हैं, स्वर्ग लोक को, अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति। अब स्वर्ग कौन जानना चाहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वेदों में वर्णित, और जो सारा कार्य तीन गुणों के अंतर्गत है, त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्र गुणो भव अर्जुन। इस श्लोक का प्रभुपाद जी यहाँ भाव लिख रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान ने लिखा है कि सारे वेदों में तीन गुणों के अंतर्गत कर्म कांड के यज्ञों का वर्णन है, और अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आओ। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो मुक्ति का दरवाजा खोलता है, और मुक्ति का अर्थ ही है भगवान की भक्ति में लगना। तो अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अनिरुद्ध न केवल हमारे कर्मकांड के कार्यों में सहयोग करके लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, परंतु वो तो मुक्ति का मार्ग भी भक्ति के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी खोल देते हैं। जैसे गर्मी से भौतिक आग है उससे गर्मी निकलती है, ऐसे अनुरुद्ध की कृपा से हम भक्ति में लगे, तो इसका भाव है वही अग्नि जो हमारी जीभा की अधिदेव है, जो हमारी वाणी की, वो हमारी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाए। 38वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। ओहो कृष्ण, फिर हमारा अपने आप बंद हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 38, ये 38, 38 नेट की प्रॉब्लम। मैं तो ऑफिस में बैठ के करता हूँ, इनका तो वाईफाई स्ट्रांग है। नमा ऊर्जा ईशे त्रिया पत्यय यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय च जीवानां, नमः सर्वरसात्मने। रसात मने ये भी जीभा का फंक्शन है, जीभ जीभ के दो कार्य है, बोलना और फिर आपका जीव बंद हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेट थोड़ा सा चला गया बेचारा, देखें नमो ऊर्जे में क्या लिखा है। ओ कृष्णा 38 हाँ, तो इसमें जो श्लोक का भावा अनुवाद पढ़ते हैं, जो श्लोक पढ़ा अभी, श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवान जो पितरों को पितरों की पूर्ति करते हैं और देवताओं की भी पूर्ति करते हैं, अथवा जो पितरों को देना है देवताओं को देना है उसको देने में समर्थ जो है कौन है, आप चंद्रदेव हैं, चंद्र के अधिदेव हैं, चंद्र लोक के अधिदेव हैं, तीनों वेदों के स्वामी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं जो सारे जीवों को संतुष्ट करते हैं। तृप्ते आत्मने जो शब्द है, तृप्ते सर्वरस आत्मने, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं हम चंद्रमा के चंद्रलोक के अधिदेव को प्रणाम करते हैं जो पितरों को अर्पण करने की और देवताओं को अर्पण करने का स्वरूप है चंद्रमा, वो तीनों लोकों के नाथ है। और मैं उनको हाँ प्रणाम करता हूं कि जीवों को वो रस देते हैं, वो सारे रसों के सार हैं। मैं प्रणाम करता हूं पितरों को अर्पण करने और देवों को अर्पण करने वाले को, जिसके द्वारा पितरों और देवों को अर्पण किया जाता है, कौन? चंद्रदेव। वो कौन है? यज्ञ रेत से नाम है चंद्रदेव का, मुंह सो चंद्रदेव। वो क्या करे? वो जो मेरा ऋण है मेरे ऊपर, किसका ऋण है? बोला देव का ऋण है, पितृ का ऋण है, ऋषि का ऋण है, जितने भी मेरे ऊपर ऋण है वो